गुरुदेव से जब अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने की प्रार्थना की तो गुरुदेव ने कहा कि स्थिर बुद्धि में अर्थात ठहरी हुई बुद्धि में सब ज्ञान स्वतः पैदा हो जाता है। और देखते हैं स्वामी जी का दिव्य ज्ञान जिसमें हम सभी स्नान कर रहे हैं, तो स्थिर बुद्धि का क्या अर्थ है और स्वामी जी ने स्थिर बुद्धि की स्थिति प्राप्त करने को क्या साधना की थी। बहुत अच्छी बात है, जहाँ आपने ये चर्चा पढ़ी होगी वहाँ उपाय भी पढ़ा होगा। उसी जगह पर ये लिखा है कि उसका पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन। बुद्धि की स्थिरता में सब ज्ञान स्वतः ही अभिव्यक्त होते हैं। इसका पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन। और थोड़ा और विस्तार कर दूं तो इंद्रियों को विषय विमुख करके मन को निर्विकल्प कर देने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि जो है वह समस्ती शक्ति का एक अंश है और भौतिक तत्वों पर ही यह काम करती है, इतना तो आप लोग मानते ही हैं। सत्य से अभिन्न होने में, अविनाशी से अविनाशी योग प्राप्त करने में और परमात्मा से एक होने में बुद्धि सहायक नहीं है जी। बुद्धि वहां नहीं जाती है। तो बुद्धि का फंक्शन, बुद्धि का काम कहाँ तक है? जहाँ तक भौतिक तत्वों का मामला है। तो इंद्रियां जब विषय विमुख कर लेंगे आप तो मन निर्विकल्प हो जाएगा। तो मन में अगर किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठेगा तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, भीतर से मेरे में बोलने का संकल्प है तो स्वर यंत्र से काम लेती हूँ मैं और ये बजने लगता है। जैसा जैसा स्वर निकालने का संकल्प है वैसा स्वर निकल रहा है। तो इस स्वर यंत्र के काम करने की आवश्यकता कब तक है? जब तक मुझ में बोलने का संकल्प है। ठीक है, अगर मैं बोलना न चाहूँ, किसी प्रकार की बातचीत करना आदमी न पसंद करे, छोड़ दे, तो स्वर यंत्र शांत हो जाएंगे ना, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही जब व्यक्ति इंद्रियों को विषय विमुख कर लेता है और मन को निर्विकल्प कर लेता है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बुद्धि इंद्रियों के विषय विमुख करने से और मन को निर्विकल्प करने से बुद्धि का काम खत्म हो जाता है। अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का जो काम है, वो कब तक चलता है? जब तक कि किसी प्रकार के संकल्प की उत्पत्ति होती रहे। तो उसका काम है कि वो विवेचन करेगी कि संभव है कि नहीं है, कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत तरह की बातें उसमें फंक्शन क्रियाएं होने लगती हैं। तो ऐसा कर देने से बुद्धि सम हो जाती है। अब उसके लिए कोई काम नहीं रहा। तो जो बुद्धि सम हो जाती है तो उस बुद्धि की समता में जब बाहर के भौतिक तत्वों के प्रभाव से उसमें फंसी हुई बुद्धि नहीं है तो उस बुद्धि की समता में भीतर के ज्ञान का प्रकाश होता है और उसमें सब ग्रंथों में जीवन का जो सत्य अभिव्यक्त किया गया है वह स्वतः ही उसमें सब प्रकट हो जाता है। एक भाई ने एक ने और ये प्रश्न दिया है और इसमें लिखा है कि स्वामी जी ने स्थिर बुद्धि की स्थिति प्राप्त करने को क्या साधना की? तो इंद्रियों को विषय विमुख करना, मन को निर्विकल्प करना, एकांत में रहना और मौन रहना। पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन और साधना है विषयों से विमुख हो जाना और सब संकल्पों का त्याग कर देना। तो सब विषय भोगों का त्याग कर दो तो इंद्रियां विषय विमुख हो जाएंगी और सब संकल्पों का त्याग कर दो तो मन निर्विकल्प हो जाएगा। तो ये उसकी साधना है और इसी साधना से उनकी बुद्धि स्थिर हो गई और बुद्धि की स्थिरता में उन्होंने सब वेद उपनिषद सब पढ़ लिया और पढ़ने वालों को धड़ाधड़ उत्तर देते रहे। तो तो जो बुद्धि के स्तर पर जो जो शास्त्रों का अर्थ समझा जाता है उसमें और ठहरी हुई बुद्धि में जो शास्त्रों का अर्थ प्रकाशित होता है उसमें कितना अंतर मालूम होता था, तो हम लोगों ने सबने देखा ही सुना है। अध्ययन के आधार पर बोलने वालों की जुबान बंद हो जाती थी। जब हमें एक भाई लिख रहे हैं शंका, जब हमें प्रभु से भी कुछ नहीं चाहिए तो प्रार्थना क्यों? अच्छी बात है, उनके भीतर ये शंका उठी है। तो प्रार्थना उसको नहीं कहते हैं जो जो कुछ चाह की पूर्ति करने के लिए किया जाए, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है जीवन की आवश्यकता अनुभव करना। मुझे सत्य चाहिए, मुझे अविनाशी जीवन चाहिए, मुझे नित्य योग चाहिए, मुझे प्रभु प्रेम चाहिए। तो जो सत्य है, जो नित्य विद्यमान है, उससे अभिन्न होने की आवश्यकता जो जगती है भीतर में, उसका नाम है प्रार्थना। और वो अनिवार्य है। वह प्रार्थना तभी आरंभ होती है जो भगवान से कुछ और नहीं मांगता है। धन चाहिए कि स्वास्थ्य चाहिए कि जस कीर्ति चाहिए कि संतान चाहिए कि सुख भोग चाहिए कि लंबी जिंदगी चाहिए, ये सब जो लोग चाहते हैं, इसके लिए भगवान से जो कुछ कहा जाता है उसका नाम प्रार्थना नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना शब्द के दो अर्थ बना दिए। एक कहा वैधानिक प्रार्थना और एक कहा अवैधानिक प्रार्थना। अब महाराज जी का अपना ये शब्दावली की रचना है। तो वैधानिक प्रार्थना उसको कहते हैं कि जो अवश्य पूरी होती है, जीवन की मांग पूरी होती है, सत्य की जिज्ञासा पूरी होती है, प्रेम की अभिलाषा पूरी होती है, तो इसकी जो आवश्यकता अनुभव करता है आदमी, उसका नाम है वैधानिक प्रार्थना। और हे भगवान मुझे मुकदमा जिता देना, हे भगवान मुझे व्यापार में लाभ दे देना, इसका नाम स्वामी जी ने हम लोगों को समझाने के लिए कह दिया कि भाई ये अवैधानिक प्रार्थना है, ये पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और हो जाए एक बार तो फिर भी सब छूट सकता है। विधान के आधार पर विधायक की सत्ता और विधायक के नाते विधान की सत्ता मानना, इनमें से हमारे लिए कौन अधिक हितकर है? जो तुम्हें पसंद आवे सो तुम्हें हितकर है। एक ईश्वर विश्वासी विधायक की सत्ता को स्वीकार करता है तो विधान को मान लेता है कि यह परमेश्वर की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो किसी को हानि मत पहुंचाना। तो विधायक को मान लिया तो विधान को मान लेता है। और एक विचारक है, खोज के आधार पर चलना चाहता है तो वो देखता है कि संसार में इतना जबरदस्त विधान चल रहा है, तो विधान को देख करके विधायक को मान लेता है। एक साइंटिस्ट का उदाहरण मैं आप लोगों को सुनाया करती हूँ। 4-6 बरस पहले की बात है, बातचीत हुई थी मेरी एक साइंस लेक्चरर से, तो उन्होंने अपने मित्र की कथा सुनाई थी मुझको कि वो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है, ग्रह नक्षत्र के एस्ट्रोनॉमी, तो उसमें वो रिसर्च कर रहे थे। देखा उन्होंने कि शून्य आकाश में इतना ट्रैफिक है, दिन रात ग्रह नक्षत्र तारे अपनी अपनी धुरी पर अपनी अपनी गति में चलते ही जाते हैं, तो शून्य आकाश और उसमें इतना असंख्य यात्री और फिर भी कहीं कुछ एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, तो कौन संभाल रहा है, इनको कौन चला रहा है, ये किसके विधान पर चल रहे हैं, ये किसकी आज्ञा पर चल रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर तो कोई दिखता ही नहीं है। तो उसने अपने रिसर्च के विषय को छोड़ दिया, एकांत में जाकर के बैठ गया, कहने लगा कि अब ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि कौन नापता रहे, अब चलो उस कंट्रोलर से मिल लो, सब समाचार मालूम हो जाएगा। ये अभी की बात है, उस भाई को मिल ही गए होंगे कंट्रोलर, जो इतना सब छोड़ छाड़ के बैठेगा उसे मिलने में क्या देर लगेगी। तो उसने क्या किया, उसने विधायक की सत्ता नहीं स्वीकार की थी, उसने विधान देखा कि कैसे ऐसे हो रहा है, कौन चला रहा है, कौन संभाल रहा है, किसके किसके संकेत पर इतने ग्रह नक्षत्र आवाज गति से असंख्य असंख्य वर्षों तक युगों तक चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का एक सहस्रांश भी उनकी गति में धीमापन या तेजी नहीं आती है। लाख लाख वर्ष बीत गए, चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, अपनी ही दूरी पर चल रहे हैं, फर्क हुआ ही नहीं कभी। तो ऐसा कंट्रोलर तो कोई होगा जरूर, भले दिखाई नहीं देता है तो चलो अब उससे मिल लेते हैं। तो विधान देख करके विधायक को मानना हो गया ठीक। अब प्रश्नकर्ता भाई पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा अधिक हितकर है, तो दोनों ही हितकर हैं, अहितकर तो इसमें से कोई है ही नहीं है, और आपको जो रुचि है उसको ग्रहण कर लीजिए। विधायक में सहज रूप से विश्वास होता हो तो विधायक की सत्ता स्वीकार करके विधान मान लीजिए, और विधायक को मानने की इच्छा न होती हो तो जीवन के विधान को देख देख करके विधायक को स्वीकार कर लेना पीछे से। सेवा प्रवृत्ति का अंत सहज निवृत्ति में होना चाहिए। इस निवृत्ति का स्वरूप क्या है, अथवा सेवा का अंत त्याग में होना चाहिए और करने का राग मिट जाना चाहिए, तो इस बात की व्याख्या तो बहुत जोर से उस दिन हो गई थी, काफी कर दिया था मैंने। सहज निवृत्ति का अर्थ ये होता है कि अपने आप से ही आपके भीतर बाहर की सब गतियां शांत हो जाएं। तो जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान, इन तीनों ही के आधार में एक पाठ हम लोगों को पढ़ाया जाता था विश्वविद्यालय में, हाउ लाइफ बिगिन, गति गति आरंभ कहाँ से हुई, तो कहाँ से आरंभ हुई उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि खोजने चले तो वहाँ जो पढ़ा वो तो अधूरा ही था। स्वामी जी महाराज ने जो पढ़ाया वो पूरा था। तो स्वामी जी महाराज ने क्या पढ़ाया कि जीवन में करने का राग है तो राग के कारण से अहम में स्फूर्ति उत्पन्न होती है, फिर अहंकृति आरंभ हो जाती है, फिर संकल्पों के नए नए रूप बन जाते हैं, फिर ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां सक्रिय हो जाती हैं। तो इसका खूब विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन भी किया मैंने, और फिर दार्शनिक अध्ययन करने पर भी यह इस बात का पूरा पोषण भी हो गया और निवारण की साधना भी सामने आ गई। तो प्रवृत्ति में हम लोग प्रवृत्त क्यों होते हैं, ऐसा अगर सोचिएगा तो स्थूल स्तर पर देखिए तो सूक्ष्म शरीर में संकल्पों का दर्शन होता है ना, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खाना है, ये करना है, ऐसा। तो जब भीतर से संकल्प उठते हैं तो हम प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो जाते हैं। साधक जन क्या करते हैं कि अशुद्ध संकल्पों को और सुख भोग के संकल्पों का त्याग कर देते हैं, नहीं 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 मैं साधक हूँ, इन संकल्पों का स्थान नहीं है मेरे जीवन में, तो वे संकल्प वहीं खत्म हो जाते हैं। और शुभ संकल्प जिनमें कि परिवार और समाज की सेवा बनती हो तो ऐसी प्रवृत्ति में हाथ डालते हैं, और हाथ डालने में भी उनको इस बात का पूरा ज्ञान रहता है कि ये कर्म करना है केवल करने के राग को मिटाने के लिए, इसके बदले में अपने को कुछ नहीं चाहिए, ना मटेरियल रिवार्ड चाहिए, ना वर्बल रिवार्ड चाहिए। आदमी बहुत शानदार हो जाता है तो किए हुए के बदले में कुछ सामान लेना पसंद नहीं करता, ये क्या बात है, मैंने पैसे के लिए किया था क्या, मैं मजदूर हूँ क्या, मैं गरीब हूँ क्या, इनकार कर देता है, नहीं 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 ये सब नहीं चाहिए। तो ये सब नहीं चाहिए तब उनको वर्बल रिवार्ड चाहिए, तो पेपर में निकलना चाहिए कि इन सेवाभावी सज्जन ने इतना इतना सामाजिक काम किया और ये इतने महान हैं कि उसके बदले में जो कुछ देने के लिए पसंद किया गया तो उन्होंने इनकार किया। तो ये जो पेपर में निकल जाएगा ये क्या है, ये वर्बल रिवार्ड है, मुंह जवानी पुरस्कार है शाब्दिक। तो सही प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि उसके बदले में अपने को किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान ले करके जब प्रवृत्ति में हाथ डालता है आदमी, तो काम खत्म होने के बाद भीतर से बाहर से सब तरफ से अपने आप शांति आ जाती है। तो सहज निवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि एक निवृत्ति का अर्थ तो ये है कि अभ्यास के बल पर इंद्रियों को विषय विमुख करो, मन की गति पर कंट्रोल करो, चित्त को स्थिर करो। तो मन को रोकना, मन को बाधित करना, मन को संभालना और चित्त को स्थिर करना, इनका एक अभ्यास होता है। तो एक तो अभ्यास जन्य निवृत्ति है और एक है कि ज्ञान पूर्वक आपने हितकारी कार्य किया और उसके बदले में कुछ भी लेना अपने लिए पसंद नहीं किया, तो कार्य के अंत में सब प्रकार की क्रिया शक्ति जो है वो उस अविनाशी शांति में अपने आप डूब जाती है। जो संसार की जो गतिशीलता आरंभ होती है वो अखंड शांति में से आरंभ होती है और जब उसका काम खत्म होता है तो वो जाकर के उसी शांति में विलीन हो जाती है। तो एक तो अपने पर जोर डाल करके गति को रोकना और एक सहज भाव से सब गति जाकर के उस शांति में विलीन हो जाए। तो सहज भाव से जब गति विलीन हो जाती है, शांति में जाके डूब जाती है, इसको सहज निवृत्ति कहते हैं। सेवा का अंत त्याग में, तो सेवा का व्रत मनुष्य के जीवन में है इसी उद्देश्य से कि उसमें त्याग का बल आ जाए। सुख का भोगी बंधन में बंधता चला जाता है, पराधीन होता चला जाता है और सेवा का व्रत लेने वाला सेवक उत्तरोत्तर स्वाधीन होता चला जाता है। कैसे कि सेवा करेंगे और उसके बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहेंगे, तो इस व्रत से उसके भीतर अलौकिक शक्ति अभिव्यक्त होती है जिसके बल पर वह सब सांसारिक बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए सेवा का अंत अगर त्याग में हो जाए तो समझना चाहिए कि मैंने ठीक सेवा की, और सेवा के बदले में अधिकार लोलुपता जग जाए तो समझना चाहिए कि मैंने सेवा नहीं की, मजदूरी की। जब जब इनर सर्किल में घनिष्ठ साधकों के साथ बैठ करके बातचीत होने लगती है तो मैं अपना दिल टटोलती हूँ, अपना चित्र उनके सामने रखती हूँ और उनको भी संकेत देती हूँ कि सोचते जाओ 6 महीने सेवा कार्य किया है कि 2 बरस किया है कि 5 बरस के लिए पद लेकर किया है कि 1 साल के लिए कि बिना पद लिए इतने दिन की सेवा की है। तो सेवा के अंत में अगर भीतर में अपने आप से रोम रोम में शांति छा नहीं जाती तो ऐसा समझो कि मेरी सेवा में कहीं कोई त्रुटि रह गई, अथवा ऐसा न लगे कि देखो इस संस्था की मैंने इतनी सेवा की और इस संस्था वाले लोग हमारी इस सुविधा का ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो तो ध्यान नहीं रखते हैं, ये तो उनकी वे अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, तो उनका तो मालिक भगवान ही है, जाने दो उनको। लेकिन तुम्हें जो याद आ गया कि मैंने इस संस्था की इतनी सेवा की और इसके बदले में मुझे सुविधा नहीं मिल रही है, तो जो सुविधा नहीं दे रहा है उसकी त्रुटि तो उसी के लिए छोड़ दो, अपने लिए देख लो कि तुमको अगर याद आ गया कि मुझे सुविधा क्यों नहीं मिली तो सब किया कराया मिट्टी। सेवक को अपनी सुविधा की याद नहीं आती है, सेवक में त्याग का बल आ जाता है। जो पहली पीढ़ी के अपने लोग थे जैसे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इन लोगों को जहाँ बैठा दिया गया आज वहाँ बैठ करके वैसे काम किया और कल वहाँ से उठा के दूसरी जगह बैठा दिया तो वहाँ बैठ के काम किया। तो ये लोग पद की शोभा बढ़ाते थे, पद के अधीन नहीं होते थे। ऐसे लोग हैं संसार में कि पद की पकड़ में वे नहीं आते हैं। पद पर बैठा दो तो उस व्यक्तित्व के बैठने से पद की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन वे स्वयं उस पद में बंधते नहीं। जब मौका लगा तब छोड़ करके अलग खड़े हो जाते हैं। तो सेवा का अंत जो है त्याग में होता ही है, यह है मानव जीवन का एक अनुभूत सत्य है। और स्वाधीन तो व्यक्ति होता ही है राग निवृत्ति से, राग मिट जाएगी तो उसको स्वाधीनता मिल जाएगी। इस प्रश्न में भी वही बात है, स्वामी जी ने कहा है कि ठहरी हुई बुद्धि में श्रुति का ज्ञान अवतरित होता है, कृपया स्पष्ट करें। तो हो गया, हम अचार होना चाहते हैं, उपाय बताइए। उपाय का उपाय नहीं पूछा जाता है, अचार होना शांति का उपाय है, अचार होना मुक्ति का उपाय है, अचार होना स्वाधीन जीवन में प्रवेश करने का उपाय है। तो उपाय का उपाय पूछते रहोगे तो बनेगा नहीं। ये उपाय है, इसको करना है, चार छोड़ना है, और आपको चार छोड़ने आता है। कैसे मैं बताऊं, एक मोह की संतान है और एक मित्र की संतान है, और आपने भले आदमी हो करके भलमन सहज से दोनों को संभालना शुरू किया है। अपना लड़का बड़ा आदमी हो जाए, बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना लिखना कर ले, और ये मेरे मित्र का लड़का भी ऐसा ही हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी चाह हुई, इसमें आपने प्रयास आरंभ किया, और दोनों ही लड़के पिछड़ रहे हैं, तो बड़ी सहज भाव से आप मित्र के लड़के से अचार हो जाएंगे। भार में जा नहीं होता है तो मत पढ़, नहीं सीखता है तो मत सीख, छोड़ देंगे उस चार को, बड़े सख्त से छोड़ देंगे। और जो अपना लड़का है वो 10 बार फेल करेगा तो 11वीं बार इम्तहान दिलवाएंगे। अचार होने आता है कि नहीं जी? आता है। ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं पर स्वीकृति दृढ़ नहीं हो पाती। बड़ा बढ़िया उपाय महाराज जी ने बताया, ईश्वर को स्वीकार करने में एक शर्त है, केवल ईश्वर को स्वीकार करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो इतना बड़ा है, वो इतना विशाल है, इतना व्यापक है कि वो और किसी के साथ तुम्हारे दिल में नहीं घुसेगा, वो अकेला ही घुसना पसंद करता है। इसलिए स्वीकृति दृढ़ क्यों नहीं होती कि ईश्वर भी मेरा है, ये हारमास का बना हुआ शरीर भी मेरा है, ये ईंट पत्थर का बना हुआ मकान भी मेरा है, दादाजी तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो भाई 100 चीज मेरी है, उसमें से एक ईश्वर भी मेरा है, तो 1/100 ईश्वर का स्थान हुआ ना, तो कैसे दृढ़ होगी स्वीकृति? वहां तो 100% चाहिए, 99% भी नहीं चलेगा, 100% चाहिए। इसलिए स्वीकृति दृढ़ नहीं होती। जिन भाई बहनों को स्वीकृति दृढ़ करनी हो उनको भक्तों की सलाह माननी चाहिए। भक्तों ने क्या सलाह दी? तो मीरा जी ने कह दिया, उपदेश नहीं देती थी मेरी तरह लेक्चर नहीं देती थी मीरा जी, लेकिन मीरा जी अपने मन का भाव प्रकट करती थी। तो उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूर सरोन को, और प्रेम का मंत्र स्वामी जी ने पढ़ाया है कि कोई और नहीं है, संस्कृति में है, प्रेम का मंत्र स्वामी जी ने पढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि कोई और नहीं है, मीरा जी ने कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है, ये मीरा जी ने कहा। और स्वामी जी कह रहे हैं कि ईश्वर विश्वास को दृढ़ करना है तो ये कहो कि दूसरा कोई है नहीं, ही नहीं है दूसरा, कोई और नहीं है, वो एक ही है जिससे मैंने नाता जोड़ लिया, जो मेरा हो गया, हम हैं और वो है बस, और सब कुछ उसमें खो गया। तो स्वीकृति दृढ़ हो जाए जी महाराज के आस पास हम लोग घेरे रहते थे, दो चार नई उम्र के लोग भी, पुरानी उम्र के लोग भी, और बातचीत हो रही है, कोई जल पिला रहा है, कोई सिरसा ला रहा है, कोई गपशप कर रहा है, कोई अपना दुख सुना रहा है, तो बात करते रहते महाराज तरह तरह से, और बीच बीच में हृदय से उद्गार कुछ कुछ निकलता रहता, वाह प्यारे तुमने खूब किया, वाह यार तुमने खूब किया, ऐसे किया वैसे किया। तो कभी कभी मुझे लगता कि हम लोग जो स्वामी जी महाराज के सेवा में लगे हुए हैं, तो महाराज हम लोगों को इतनी शाबाशी दे रहे हैं, तो संकोच में और कुछ नम्रता में मैं ये कह देती, अरे महाराज हम लोगों से क्या बनता है, आप कहा ऐसी ऐसी बात करते रहते हैं, तो खूब हंस देते और कहते कि लाली मैं तुमको थोड़े कह रहा हूँ, तुम समझ रही हो कि तुमको कह रहा हूँ, कोई और है ही नहीं। तो ईश्वर विश्वास को, स्वीकृति को दृढ़ करने का ये अचूक उपाय है, किसी और की सत्ता ही नहीं है। तो पहले मीरा जी की बात मान लो, क्योंकि बहुत सारे दिख रहे हैं अपने को, तो पहले उनकी बात मान लो। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो नको, दूसरा कोई मेरा है नहीं, केवल गिरधर गोपाल मेरे हैं। तो पहले ऐसा मान लो कि केवल वे ही मेरे हैं, और पीछे क्या होगा कि सब उनमें समा जाएगा, तब तो अपने आप दिखने लगेगा कि वो ही है, कोई और है नहीं। ये प्रेम का मंत्र है, स्वीकृति को दृढ़ करने का उपाय है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में मनुष्य अच्छे कर्म करने से मानव बनता है, तो फिर वह मानव बनने के बाद गलत काम क्यों करता है? तो पूर्व जन्म में मनुष्य, तो मनुष्य और मानव, इन दोनों में आपने भेद कर दिया, तो मानव को ही मनुष्य कहिए, मनुष्य और मानव में भेद मत कीजिए। और मानव सेवा संघ के सिद्धांत में तो ऐसा माना गया कि मानव जीवन जो मिलता है किसी को, तो वह कर्म का फल नहीं है, क्योंकि शुभ कर्म करने का प्रश्न तो उठेगा मानव बनने के बाद। गाय बैल घोड़ा बकरी के जीवन में शुभ अशुभ कर्म का प्रश्न नहीं है, वो तो प्रकृति के नियम में बंधे हुए भोग योनियां हैं। शुभ कर्म करने का प्रश्न उठेगा कब? जब विवेक का प्रकाश देकर आपको दुनिया में भेजा जाएगा तब। तो पहले मनुष्य बनता है, पीछे शुभ कर्म करता है, इसलिए मानव जीवन जो है वो शुभ कर्म का परिणाम नहीं है। मानव जीवन जो है वो जीवन दाता का कृपा प्रसाद है, और जीवन मिलने के बाद आदमी को शुभ कर्म ही करना चाहिए, अशुभ नहीं करना चाहिए। तो आप कहते हैं कि क्यों करता है? तो दूसरों के बारे में तो हम जान ही नहीं सकते, अपने से पूछ लो कि मैं गलत काम क्यों करता हूँ, ठीक है ना? किससे किससे पूछे कि तुमने गलती क्यों की, तुमने गलती क्यों की? और दूसरों से पूछने से फायदा ही क्या होगा, अपने ही से पूछ लो कि मैंने गलती क्यों की। और सचमुच अगर आप पूछेंगे तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा, गलती मिटाने का बल भी मिल जाएगा। उत्तर क्या मिलेगा? विवेक का अनादर किया इसलिए गलती की। और बल क्या मिलेगा? अब से अनादर नहीं करूंगा, गलती खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, किंतु वह माया से प्रेरित होकर कार्य करता है, तो क्या माया ईश्वर से भी प्रबल है? ऐसा मालूम होता है, अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ना, जो साइकोलॉजिकल उत्तर आ रहा है दिमाग में, ऐसा मालूम होता है कि हम लोग अपनी गलती का दायित्व चाहे ईश्वर पर चाहे माया पर देना चाहते हैं, तो मानव सुरासन नहीं करेंगे। एक एक अंग बात मुझे याद आ गई, वो मैं आपको सुनाऊं। समाज की बड़ी भयंकर दशा है, एक एक अंग जो है वह विकृत हो गया है। सामान्य जन समाज इस पीड़ा से बहुत पीड़ित है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत से नवयुवकों से परिचय है, जो बड़े होनहार विद्यार्थी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं जगह जगह पर। तो उनसे अभी भी बातचीत होती रहती है और वे कहते हैं कि जहां भी रहो, अगर ईमानदारी और सच्चाई से राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करते हुए प्रजा की सेवा करना पसंद करो तो बहुत तकलीफ हो रही है। ये वे लड़के कह रहे हैं। शरीर के संबंध से 6 भाइयों के बीच में 18 भतीजे हैं। बहुत से यूनियन गवर्नमेंट में भी हैं, प्रोविंशियल सर्विस में भी हैं और दूसरी दूसरी जगह पर भी हैं, शिक्षा विभाग में भी हैं, तरह तरह के स्थान पर हैं और भी बहुत से हैं। बड़ा भारी लंबा चौड़ा परिवार, बहुत सी रिश्तेदारियां सब। लड़के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग में आते तो प्रायः रांची में ही मैं थी और उनकी एक एक गोष्ठी रविवार को हुआ करती थी। उन लोगों की बात मैं बता रही हूँ। तो कई लड़के ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रोगी हो गए युवावस्था में, 40 बरस के आसपास हैं, अभी कम ही है। क्या हो गया तो कहते हैं दुआ करे क्या, ऊपर से दबाव और नीचे से घेराव, ब्लड प्रेशर कैसे ठीक रहे। थोड़े में वो कथा मुझको ज्यादा नहीं कहनी है तो मैं बता रही हूँ कि अंग अंग ऐसा विकृत हो गया है कि सही आदमी, ईमानदार आदमी कुशल से रह नहीं सकता। बड़ी परेशानियां तरह तरह की, खास करके अब कौन विभाग का नाम लिया जाए, शिक्षा में भी वैसे ही है और शासन में भी वैसे ही है और जगह जगह पर अब सेना में भी वैसे ही प्रवेश कर रहा है, बहुत सी बातें। तो क्या होता है कि मानव सेवा संघ का कार्यक्रम जब होता है, सामाजिक लोग जब आते हैं तो मुझे कहते हैं कि आपने व्यक्तिगत रूप से शांति, मुक्ति, भक्ति की बात बहुत अच्छी तरह से सामने रख दिया और हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम सब लोग तो बड़े जोर से उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बृहद समाज के साथ व्यक्ति का जीवन इस प्रकार से घुट गया है कि समाज की ओर से आने वाली आपत्ति विपत्ति के बीच में हम लोग मेंटल बैलेंस को रखें कैसे और अपने अपने नैतिक स्तर को संभालें कैसे। तो ठीक बात है भाई, मैं सोचने लग जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूँ। मानव सेवा संघ ने उत्तर को दिया, क्या कहा कि भाई समाज कोई कोई हवा में तो बनता नहीं है, व्यक्तियों का समूह समाज है। एक एक व्यक्ति एक एक जगह पर अगर सही हो जाए तो उस एक सही व्यक्ति से वहाँ का वायुमंडल सही हो सकता है, और एक एक व्यक्ति अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाए तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का समूह जो बनेगा बहुत सुंदर समाज बन सकता है। तो उपाय तो यही है, दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन फिर कोई कोई साधु संत मंडली के मिल जाते हैं तो हमको डरा देते हैं, कह देते हैं। एक सज्जन मिले थे हमारे साथ के कार्यकर्ता, तो कहने लगे कि मैं अपने गुरु महाराज के पास गया तो उन्होंने पूछा कि अरे राधानाथ तू मानव सेवा संघ में क्या करता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण करता हूँ। और क्या बताएं, सही बात जो थी उन्होंने कह दिया। तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि अरे भैया सुन, तू कलयुग मिटा देगा, कलयुग के प्रभाव को मिटा देगा, कलयुग का प्रभाव को मिटा देगा, चला है सुंदर समाज का निर्माण करने। बेचारे सुन करके चुप रह गए, और गुरु महाराज को उत्तर क्या है, मेरे पास आके कहने लगे बहन जी अब क्या करें, अब क्या करें, अब बहन जी भी चुप, अब क्या करें। मन ही मन इस बात का मुझे दुख हो गया, हमने कहा कि ये तो बात तो कह रहे हैं, अब हमारे पास इसका उत्तर क्या है। उत्तर को आदमी जीवन से दे, कथन के उत्तर का तो कोई फल नहीं होता। तो सहायता तो मुझे बहुत मिली है, बहुत सहायता मिली है। कल संध्या समय, कल प्रातःकाल की बैठक में आपने सुना कि बुढ़े लोगों को पेंशन दिलाने के लिए हरिराम जी गांव से फॉर्म भरवा के सही करवा के ले आते हैं, तो मानव सेवा संघ के आजीवन कार्यकर्ता के ऊंचे चरित्र की धाक ऐसी जम गई है कि अगर हरिराम का वो रिकमेंड किया हुआ है तो मजिस्ट्रेट ऊपर दोहरा के सोचता नहीं है कि सत्य है कि मिथ्या है। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं कि कलयुग में नैतिक ऊंचाई का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रभाव तो है, लेकिन सोचने की बात है। तो यह प्रभाव व्याख्यान से तो नहीं जम सकता, यह प्रभाव ऊंचे चरित्र से जम सकता है, ठीक है ना। तो बहुत संख्या मेरी दृष्टि में, अब हमारी दृष्टि कौन सी पूर्ण है कि हम उसकी गलती न जाने, लेकिन फिर भी ऐसे ही सोचो कि मेरी दृष्टि में अगर बहुत संख्या गलत दिखाई दे रही है तो बुराई की वृद्धि में अगर कोई रोक नहीं डालता है तो हम भलाई की वृद्धि में रोक डाल करके निराश क्यों हो जाए। ठीक, निराश तो नहीं हो सकते। तो एक एक भाई को, एक एक बहन को इस ढंग से अपने को अच्छाई की ओर चलाना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने लिखा भी है और बताया भी है कि अगर बिना प्रचार किए बुराई का प्रचार हो जाता है तो बिना प्रचार किए भलाई का प्रचार नहीं हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। इतना बड़ा समूह, इस बीच में अगर एक व्यक्ति विकराग बैठा है, एक व्यक्ति शुद्ध हृदय का बैठा है, एक व्यक्ति जन समाज का हितकारी बैठा है, तो उसके भीतर से जो संकल्प और चिंतन उठ रहे हैं वो क्या दूसरों में अच्छे चिंतन को उद्भूत नहीं करेंगे? करेंगे। तो बुराई का प्रचार हो जाता है बिना व्याख्यान दिए, तो भलाई का प्रचार क्यों नहीं हो जाएगा? हो जाएगा जरूर, जीवन के माध्यम से करना पड़ेगा, कथन से नहीं होगा। इस तरह की बातचीत हम लोग करते रहे, काम अपना करते रहे। तो सुनने को मिला मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिछली दफा दिवाली के समय पर सत्संग के बाद भागवत कथा हो गई थी यहाँ, तो उस भागवत कथा में ये सुनने को मिला कि कलयुग का जो पूरा पीरियड है, सतयुग त्रेता द्वापर से तो जरूर छोटा है, लेकिन हम लोगों के टाइम ऑफ लाइफ जिंदगी की जो अवधि है उसकी नाप तौल से तो कलयुग का पीरियड बहुत लंबा है। तो उसमें ये लिखा है कि इतना जो लंबा पीरियड है कलयुग का, इतनी लंबी अवधि है, तो वो सारा समय जन समाज में घोर अंधकार और पाप और दुख नहीं रहता है। बीच बीच में थोड़े थोड़े समय पर सतयुग का प्रभाव भी उसमें आता रहता है। पंडित जी अपना सुना रहे थे, मैं सुन रही थी, तो भीतर मुझको बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा कि अब हम नहीं कर सकते हैं कि जो जो सत्य के प्रभाव के लिए इतनी संस्थाएं, इतने संत महात्मा, इतने जन समाज के सेवक लोग प्रयास जो कर रहे हैं वो सब का सब निरर्थक जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो मुझको बड़ा आश्वासन मिला। हमने कहा कि अब तो हम और उत्साह से प्रयास करेंगे, क्योंकि सारा कलयुग घोर अंधकार में पड़ा रहेगा ऐसी बात नहीं है, बीच बीच में सत्य का प्रकाश होता रहेगा, अच्छे अच्छी वृत्तियों वाले लोग आते रहेंगे और समाज के दुख को घटाते रहेंगे और मनुष्य का समाज जो है वो अच्छे रास्ते पर चलता रहेगा। तो चूंकि मैं उस ग्रंथ के वाक्य में विश्वास करती हूँ, इसलिए मेरे दिल में कुछ सहारा मिल गया। हमने कहा कि अच्छी बात है, तो अब हम इस ढंग से काम करेंगे। अब हम ये मान के चलेंगे कि कलयुग के प्रभाव से सब के सब डूब जाएं, ऐसा मत सोचो। और रामचरित मानस में भी लिखा है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, क्या काल धर्म की जो धर्म क्या पहनते ही ऐसा कुछ एक है कि जरूर कलयुग का प्रभाव हम लोग मानते हैं, लेकिन सबको प्रभावित नहीं करता। जो सचेत लोग हैं, जो भगवत भक्त लोग हैं, जो हरि आश्रित लोग हैं, जो विवेकी जन हैं, उन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ भी प्रमाण है कि आदमी चाहे तो ऊंचे उठ सकता है और इसमें समाज को ऊंचा उठाने में भी सहायता मिल सकती है। तो ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी आशा मेरे भीतर थी और उत्साह पूर्वक हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं। तो एक संत के पास मैं पहुंच गई। उन संत के जीवन की जो उनके उन संत के जीवन की जो बातें हैं उससे ऐसा प्रकट होता है कि वे सशरीर इस धरती पर हैं जरूर, लेकिन उनको अपने निज स्वरूप का, निज लोक का, निज प्रेमास्पद का अनुभव हर समय रहता है। पास में रहने वालों ने देखा है, मैंने भी रह के देखा है। उनके पास में ठहरी हुई थी, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बड़ी बढ़िया बात बताई, अभी याद आ गई, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बहुत आनंद आएगा। वो ध्यान में बैठी थी, स्त्री शरीर है, तो ध्यान में बैठी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एकांत कमरा है जहाँ पर जब उनकी इच्छा होती एकांत के रूप में रहती है, तो कहने लगी कि हम एकांत में बैठे थे ध्यान, तो मुझे ऐसा लगा कि एक पूरा प्रकाश से भरा हुआ एक अद्भुत जगह पर मैं पहुंच गई हूँ। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ है नहीं। वहाँ पहुंच करके मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे यहाँ आ गई। ये कोई बात नहीं, देखा उन्होंने तो देखा तो वहाँ नौ ऋषि बैठे थे। सबको तो उन्होंने नहीं पहचाना। बता रही थी कि एक तो मुझे मालूम हुआ कि वशिष्ठ जी हैं और दूसरे स्वामी शरणानंद जी महाराज हैं और तीसरे उनके गुरु स्वामी कार्तिकेय जी महाराज हैं। तो नौ में से तीन को इन्होंने पहचाना, बाकी को नहीं पहचाना। तो हंस के कहने लगी कि धरती पर तो मैंने ये सुना था कि सप्त ऋषियों के मंडल में सात ऋषि हैं, आप लोग तो नौ जने बैठे हैं यहाँ। तो उनके गुरु ने कहा कि हे किशोरी जी, आप ही ने तो हम दोनों को इसमें शामिल होने के लिए भेज दिया है, अपने को और स्वामी शरणानंद जी महाराज को आप ही ने तो इसमें शामिल कर दिया है, बच्चे की तरह उनके साथ खेलते थे, विनोद की बातें होती रहती थी और कुछ उसमें सत्यता भी है। तो उनके गुरु ने ऐसे कह दिया तो ये हंस के रह गई। फिर वे लोग बड़े गंभीर हो गए, ऐसा जैसे कि कोई बहुत चिंताजनक समस्या पर बातचीत हो रही हो, ऐसे वे नौ के नौ बिल्कुल गंभीर हो गए। ये देख रही थी, देख करके पूछा इन्होंने कि क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है। तो उनके गुरु ने और स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया और किसी ने बातचीत नहीं की। इन्होंने कहा कि संसार की हालत इतनी खराब हो गई है, इतने लोग सब बड़े दुख में पड़ गए हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब कैसे इन दुखी जनों को संभाला जाए। तो किशोरी जी ने अपने महाराज जी से और हमारे महाराज जी से दोनों से कहा कि महाराज जी, आप लोगों को संसार के दुखी लोगों पर इतनी दया आ रही है, इतनी चिंता हो रही है, तो आप दोनों चलिए हमारे साथ धरती पर, चल के संभाला जाए। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि किशोरी जी, आपको तो मालूम है हम धरती पर नहीं जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो किशोरी जी चुप हो गई, इनकार कर दिया और कह रही थी कि बड़े बड़े जोर से दृढ़ता के साथ इनकार किया, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, आपको तो मालूम है हम नहीं जाते हैं। तो चुप हो गई। फिर उसके बाद कहा उन्होंने कि बड़ा बड़ा सा मोटा मोटा इतना लंबा लंबा एकदम सफेद रजिस्टर सब खूब लिख लिख करके इतना था लगा के रखा है उन ऋषियों के पास। तो देखा इन्होंने, देखने लगी ध्यान से, तो उन्होंने कहा कि किशोरी जी, ये सब विधान बन रहा है संसार को संभालने के लिए। ऐसा बोलने बोलने में भी उनकी बातें जो हमको याद आ रही है, तो एकदम से बदन सिहर रहा है, कैसा लग रहा है सोच सोच के, किशोरी जी ये विधान बन रहा है संसार को संभालने के लिए। और उसके बाद इन्होंने पूछा कि ये कौन सा स्थान है, मैं कैसे आ गई यहाँ। तो उन्होंने कहा, समझे ने कहा कि ये सत्य लोक है, केवल प्रकाश और ऋषि और कुछ नहीं था, ये सत्य लोक है कह करके। और वो बोली कि वे सब ऋषि एक स्वर से रहने लगे, महात्मा और परमात्मा का सिद्धांत संसार में चलेगा, महात्मा और परमात्मा का सिद्धांत संसार में चलेगा, अब ये विधान चलेगा, महात्मा और परमात्मा का विधान संसार में चलेगा। किशोरी जी को कहा उन लोगों ने, कहते कहते फिर किसी बदल गई, तो उन्होंने अपने कमरे में अपनी ही जगह पर बैठे हुए अपने को पाया। तो सोचने लगी कि मैं कैसे वहाँ चली गई थी और कैसे वहाँ से यहाँ आ गई, वो तो हमको पता नहीं चला। लेकिन काफी देर तक उस कमरे में बैठे हुए यही ध्वनि उनके कान में गूंजती रही, महात्मा और परमात्मा का विधान संसार में चलेगा, महात्मा और परमात्मा का विधान संसार में चलेगा। तो कितनी देर तक ये ध्वनि उनको सुनाई देती रही और कितनी देर तक उस देखे हुए दृश्य की स्मृति बनी रही, और बैठे 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 सुन ली रही बहुत देर तक। तो ये घटना उन्होंने अपने अनुभव की सुनाई। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके दिल में शंका हो कि क्या जाने स्वप्न होगा तो, और क्या जाने कल्पना होगी तो भाई जिनकी शंका हो उनको तो मैं नहीं जानती हूँ, शंका वाले शंका की बात जान। लेकिन मैं महाराज जी में विश्वास करती हूँ, मैं ऋषियों के लोक हितकारी चिंतन में विश्वास करती हूँ, मैं परमात्मा की शक्ति में विश्वास करती हूँ, और मैं किशोरी जी की वाणी में विश्वास करती हूँ। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसे कि एकदम एक हारे हुए सिपाही को जैसे कि अदृश्य शक्ति से बहुत बल मिल जाए, इस प्रकार से मुझे बल मिल गया। और उसी समय मेरे ध्यान में आया कि मैं सत्संगी भाई बहनों को सुनाऊंगी कि भाई कलयुग का नाम लेकर के अपनी भूल को औचित्य मत देना कभी, ये भी तो होता है ना, कलयुग का नाम लेकर के अपने मन की
बुरी वृत्तियों का समर्थन मत करना और किसी मत देना और सुधार से और उत्थान से निराश कभी मत होना। ठीक है, स्वीकार है, बहुत धन्यवाद। अब आगे सुनो, जब नया नया नशा चढ़ा साधक होने का, साधु होने का, तो तरह तरह के प्रश्न स्वामी जी महाराज के सामने आ गए। तो जब मुझ में जो क्रिया का वेग था, खूब वेग था, जिस समय मुझको यह विश्वास था कि शारीरिक बौद्धिक बल के पुरुषार्थ से आदमी का जीवन पूर्ण हो जाता है, उस समय मैं खूब क्रिया के वेग में लगी रहती थी और अपने को समझाती रहती थी। भीतर और बाहर का संघर्ष, भीतर तो अपने विकारों के साथ लड़ना, भीतर भीतर उठने वाले विकारों से संघर्ष करना, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं मैं इस संकल्प की पूर्ति नहीं करूंगी, तो भीतर से उठ रहा है और ऊपर से जोर डाल करके दबा रही हूँ। तो एक तो भीतर का संघर्ष और एक बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों का संघर्ष। तो इतने संघर्ष में पढ़ के भी कभी हार मानने की बात जीवन में आई नहीं। बड़े जोर से कमर कस के जैसे कि सारे संघर्षों का सामना करने ही के लिए जीवन मिला हो। तो जीवन है संग्राम बंदे, जीवन है संग्राम, ले हिम्मत से काम बंदे, जीवन है संग्राम, ये गाती रहती थी और संघर्ष में पड़ी रहती थी। स्वामी जी महाराज के पास आने के बाद तो सब शांत करके बहुत धीरज से भीतर के सब संकल्पों को छोड़ करके उनकी वाणी को सुनने की जरूरत पड़ती। तो संभालते संभालते काफी समय लगा, जबकि भीतर बाहर की क्रिया के वेग को मैं थोड़ा थोड़ा समय के लिए अपने नियंत्रण में ला सकूं। तो महाराज जी तो एकदम पारखी, उनकी तो दृष्टि इतनी सघनी थी कि दूर से कोई साधक उनके पास आ रहा है तो क्या पूछने आ रहा है, स्वामी जी को मालूम हो जाता था। और कैसा भी प्रश्न करे, कितना भी सभ्य शिष्ट शब्दों में छिपा के करे, महाराज जी उसकी मनसा को एकदम समझ जाते थे। तो मेरे को देख करके ही उन्होंने तो जान ही लिया कि इनको कैसे संभालना होगा। तो जब मुझे सेवा के लिए प्रेरित करने लगे, कार्य के लिए प्रेरित करने लगे, तो मैं बहुत प्रकार के प्रश्न करूँ उनसे कि स्वामी जी महाराज आप कैसी बात करते हैं, आप तो कहते हैं कि जीवन मिलता है और प्रयत्न होने से, कुछ नहीं करने से, तो इतने प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों में क्यों डाल रहे हैं मुझे, ऐसी संभालू मैं, ऐसे ऐसे में तरह तरह के प्रश्न करते हैं। तो बहुत बढ़िया उत्तर स्वामी जी ने दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि लाली देखो, अचल की मांसल होकर सेवा करो और चाहे लहराती हुई गंगा होकर सेवा करो, लाली तुमको सेवा करनी पड़ेगी। घर की आवाज सो देती है, जाने दो। अच्छा हिमाचल होकर सेवा करो, चाहे गंगा की तरह लहराती हुई सेवा करो, तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हें पीड़ितों की पीड़ा में भाग लेना पड़ेगा। तो एक दिन हंस करके मैंने कह दिया कि महाराज कितनी मुसीबत उठा करके, भीतर बाहर कितना संघर्ष करके, आपके पास बैठ करके किसी तरह मैंने व्यक्तिगत दुख का भार उतारा। अब बाद आए साधु संत होने से दुनिया भर के दुख का भार कौन लेता फिरे, रहने दो। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि तुम रह पाओगी, रह नहीं सकते। आज मैं कहता हूं कि करो, तो अगर मेरे कहने से करोगी तो संकल्प में बंधोगी नहीं। गुरु हो तो ऐसा, मेरे कहने से करोगी तो संकल्प में बंधोगी नहीं, और फिर अपने संकल्प से करोगी तो उस पहाड़ को पार करने में भी स्ट्रेंथ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ करो। अच्छी बात महाराज, ठीक है, क्रिया का वेग तो भीतर था ही, उसे जबरदस्ती निवृत्ति वाला बनना चाहती थी मैं, तो महाराज ने नहीं करने दिया। अच्छी बात है, फिर असल हिमाचल होकर सेवा करो, इसका क्या अर्थ है? सब स्वामी महाराज ने मुझे बताया कि देवी जी, जब राग की निवृत्ति हो जाती है, जब संत जन में सहज निवृत्ति आ जाती है, जब उनके अहम की सीमा टूट जाती है, वे सब प्रकार से सत्य से अभिन्न होकर सदा सदा के लिए शांत हो जाते हैं, तब उनसे आगे करणीय जैसा कोई कर्म शेष रहता नहीं, तब उनको सेवा करना है ऐसा संकल्प उठता नहीं है, तब वे सचमुच अपनी अहम कृति से, अहम स्फूर्ति से प्रेरित नहीं होते हैं, तब तो वे असल हिमाचल की तरह शांत रहते हैं और उनके जीवन का सत्य, उनके जीवन की शक्ति, उनके जीवन की करुणा, उनके जीवन का ईश्वरीय प्रेम स्वतः ही बिना किए जन समाज की सेवा करता है। कितनी बड़ी बात है। तो मुझे याद आ गया, किशोरी जी ने जब ऋषियों की बात बताई तो मेरे ध्यान में आ गया कि त्रिगुणा तीर्थ पुरुष सत्य लोक के बाद भी धरती पर आएंगे नहीं, तो समझे ने इनकार कर दिया, पार हो गए कैसे आएंगे, यहाँ आएंगे नहीं यहाँ, लेकिन जहाँ है वहीं से हमारे आपके कल्याण का काम कर उनके हृदय की पीड़ा, कौन बात की पीड़ा, हार मनुष्य होकर इतने दुख में पड़ा रहे, मनुष्य होकर हार मास के शरीर की दासता में बंधा रहे, मनुष्य होकर जीवन और मृत्यु के संघर्ष में पड़ा रहे, तो जिसने अपना दुख मिटाया वो दूसरे का दुख देख नहीं रहा नहीं, तो उनके हृदय की करुणा, उन ऋषि मंडल के हृदय की करुणा हम लोगों को संभाल रही है। अगर ये आस्था अपने भाई बहनों के जीवन में बैठ जाए तो कितना बड़ा बल मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बात होगी। तो अचल हिमाचल होकर सेवा करो, करो नहीं तब सेवा होती रहेगी, और ऐसी सेवा की भावना जिस महापुरुष में थी वो क्या करते थे, वो कहा करते थे, हे मेरे प्यारे, कभी कभी अपने भीतर भीतर सोचते सोचते उनके मुख से वचन निकल भी जाते थे, भगवान से बातें होती रहती थी तो हम लोग सुन लेते थे, तो एक दिन बात कर रहे थे तो कह रहे थे, हे प्यारे, इस जीवन से जो सेवा लेनी हो ले लो, पर मेरे प्यारे मुझ पर इतनी कृपा करना, मुझे इस बात का भास न हो कि इसके द्वारा सेवा हो रही है। नहीं होता, अचल हिमाचल बनकर सेवा करने का क्या अर्थ है कि जीवन का सत्य अभिव्यक्त होकर जन समाज की पीड़ा से द्रवित हृदय से करुणा का रस बरसता रहे, पीड़ित जन समाज की सेवा बनती रहे और करने वाले को करनी न पड़े। तो अचल हिमाचल होकर सेवा करो का क्या अर्थ है कि तुम अपने जीवन को सत्य से अभिन्न कर लो तो उस संत जीवनी से सेवा बनती रहेगी अपने आप होता, फिर या गंगा की तरह लहराओ, तो हमारे तो लहराने के दिन थे ना, दौड़ करके भाग करके क्लास लेते 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 लेते, आज से आज 2:10 पर घंटी लगेगी तो कॉलेज में छुट्टी हो जाएगी, तो मुझे स्वामी जी के पास जाना है, तो 2:05 पर गाड़ी तैयार होकर के सामान सहित कॉलेज के फाटक पर खड़ी हो जाएगी। ये लड़कियां जो हमारे पास रहती थी, मुखबेर, चादरी, सावित्री यही लोग संभालती थी। तैयार करके फाटक पर गाड़ी खड़ी है, घंटी लगी, क्लास में से निकली और कार में बैठे, स्टेशन गए, ट्रेन में बैठे, स्वामी के पास पहुंचे और वापस जा रहे हैं तो मेरा टाइम टेबल ले लेते, मेरा हॉलीडे लिस्ट ले लेते, साल में कहाँ कहाँ कब कब छुट्टी होने वाली है, किस दिन कॉलेज खुल रहा है, किस पीरियड में पढ़ाना है, तुमको कब उपस्थित होना है। महाराज आज ओपनिंग डे है तो आज मुझको 12 बजे से पहले पहुंचना है। अच्छी बात, क्लास कब शुरू होने वाला है महाराज? 10:55 पर क्लास शुरू होगा। अच्छा ठीक है, रास्ते में नहला देंगे, रास्ते में जलपान करा देंगे, कार में बैठा करके 10:50 पर कॉलेज के फाटक पर खड़ी हो जाएगी गाड़ी। लाली जाओ पढ़ाओ, गाड़ी में से उतरी और क्लास में गई। तो इस प्रकार का बीता है विशेष वर्ष। तो ये गंगा की तरह लहराने वाली बात थी। तो हमने कहा कि इसका क्या अर्थ है महाराज? तब उन्होंने बताया कि जब तक क्रिया का वेग है भीतर, तब तक मनुष्य को इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। कोई समय, कोई शक्ति, कोई क्षण, कोई योग्यता तुम्हारी ऐसी न रह जाए जो कि जनसमाज की सेवा में लग न जाए। ये गंगा की तरह लहरा करके करो। और बल कहाँ से आता है? अब आप देखिए स्वामी जी महाराज के वचन में कितनी सत्यता है। कहते हैं कि तुमको मालूम है ये शक्ति कहाँ से आ रही है? तो भाई देखो, सब नदियों का उद्गम कहाँ है? है? है ना? अरे भाई वहीं ना बर्फ जमती है, जल कुंड सब भीतरी वहीं पर तो है, मानसरोवर उसी पर तो है। तो ये सब शक्ति का जो भंडार है वो कौन है जिसमें किसी प्रकार की क्रियाशीलता शेष हो? सब शक्ति का भंडार वो है और वो अचल ही मात्र